आज की इस किस्त में हम शफाअत के बारे में बात करेंगे। हिसाब किताब शुरू होगा और कयामत के मैदान से लोगों को निजात मिलेगी। किसी को मजाले शफाअत ना होगी। एक दिन 50,000 साल का दिन, फिर ऐसे आका अलैहिस्सलाम से हम क्यों ना मोहब्बत करें। खुल्द है सब पर हराम, जाए ना जब तक गुलाम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों है। उम्मतियों आपको मुबारक, आपको मुबारक, आपको मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारी वेब सीरीज कयामत के बाद आफ्टर जजमेंट डे में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आज इस वेब सीरीज की 4th एपिसोड है और आज की एपिसोड में, आज की इस किस्त में हम शफाअत के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, शफाअत के लुग़वी माना क्या है? वसीले के, तलब करने के हैं। जबकि शरई तौर पर किसी के लिए खैर यानी भलाई मांगना, ये शफाअत कहलाता है। हमारी शरीयत में शफाअत का अकीदा रखना वाजिब है और अकीदा शफाअत में ये भी शामिल है कि सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम ही नहीं बल्कि आपके अलावा अंबिया, मलाइका और उलमा, शहदा, सालिहीन और कसीर मोमिनीन, कुरान मजीद, रोज़े और काबतुल्ला शरीफ वगैरह सब शफाअत करेंगे और ये अकीदा रखना वाजिब है। कुछ बातें वाकई कुछ लोगों के लिए नई होंगी, लेकिन आज अगर गौर से पूरी एपिसोड देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। याद रहे कि शफाअत की दो टाइप्स हैं, दो किस्में हैं, शफाअत कुबरा और शफाअत सुगरा। आसान लफ्ज़ों में बड़ी शफाअत और छोटी शफाअत। शफाअत कुबरा हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे और इस शफाअत का बेनिफिट सारी मखलूक, यहाँ तक कि गैर मुस्लिमीन को भी पहुँचेगा कि इस शफाअत की बरकत से हिसाब किताब शुरू होगा और कयामत के मैदान से लोगों को निजात मिलेगी। और ये शफाअत सिर्फ सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ही करेंगे। उस वक्त कोई नबी इस शफाअत की तरफ आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसकी अफियत को आज हम डिटेल से जानेंगे। दूसरी टाइप्स है शफाअत सुगरा। ये शफाअत बहुत से लोग करेंगे, जैसे हुफ्फाज करेंगे, शहदा करेंगे, सालहीन, बल्कि खुद कुरान मजीद, रमज़ान और खाना काबा भी शफाअत करेगा। शफाअत के बारे में मज़ीद बताने से पहले आपको बहुत ही कमाल की हदीस और सहाबा कराम किस तरह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से शफाअत की उम्मीद रखते थे, इनका नबी पाक के वसीले के बारे में क्या अकीदा था, वो मैं कुछ बयान करता हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल और हज़रत अबू मूसा रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सफ़र के दौरान जब किसी मंजिल पर रुकते थे तो महाजरीन आपके इर्द गिर्द खेमे डाल लेते, कैंप डाल लेते थे। इस तरह किसी सफ़र के दौरान हम एक जगह पर रुके तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया, हम भी आपके इर्द गिर्द थे। अबू मूसा फरमाते हैं, मैं और मुआज रात को नींद से बेदार हुए तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हमें नज़र नहीं आए। हम परेशान हो गए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रात को कहाँ तशरीफ़ ले गए। तो हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तलाश में आगे निकले तो हमें कुछ बादलों की घड़घड़ाहट जैसी आवाज़ सुनाई दी। उसी दौरान सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हुए दिखाई दिए तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा क्या मामला, यानी हदीस का खुलासा ये बनता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों अपनी जगह से निकले हैं। तो अर्ज़ करते हैं, हुजूर हम जब नींद से बेदार हुए तो आपको अपनी जगह पर नहीं देखा, हम डर गए कि कहीं आपके साथ कोई मामला तो नहीं पेश आ गया, तो हम आपकी तलाश के लिए निकल खड़े हुए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब करीम की तरफ से एक आने वाला हालत नींद में मेरे पास आया तो उसने मुझे मेरी आधी उम्मत के बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किए जाने या शफाअत करने का इख्तियार दिया। नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिएगा, इन्हें रब अज़्ज़ा वजल की तरफ से ये ऑप्शन भेजा गया नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास कि या तो आपकी आधी उम्मत को बख्श दिया जाए या आप शफाअत ले लीजिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने शफाअत को इख्तियार कर लिया। इससे एक बात समझ आती है नाज़रीन के आधी से ज़्यादा उम्मत, यानी गौर किया जाए कि नबी पाक के कितने सारे उम्मती शफाअत की बरकत से बख्शे जाएंगे, क्योंकि आधी उम्मत की बख्शिश का तो ऑप्शन दिया गया था नबी पाक को। तो सहाबा किराम फरमाते, जब हमने ये सुना तो हमने नबी पाक से अर्ज़ की कि हुज़ूर आपसे इस्लाम के सदक़े और आपके साथ सहाबियत का शरफ पाने के वसीले से हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमें भी जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। कहते हैं सहाबा कि जब हमने ये रिक्वेस्ट करना शुरू की तो और भी लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो गए और सब ये रिक्वेस्ट करने लगे और ये तादाद बढ़ती चली गई। सुबहानअल्लाह, शाफ़ाए रोज़े महशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हौसला अफजा इरशाद फरमाया। फरमाते, मैं अपनी शफाअत हर उस शख्स के लिए करूँगा जो इस हाल में फौत हुआ कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क ना करता हो, यानी हर ईमान वाले की इंशाअल्लाह वो शफाअत फरमाएंगे। अच्छा, ये तो थी बात कि नबी पाक को शफाअत का मनसब कैसे हासिल हुआ اور پھر پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منصب یعنی شفاعت کرنے کا اختیار رب کی عطا سے دیگر لوگوں کو بھی عطا فرمایا. جی ہاں، مثلا حدیث مبارکہ ہے کہ جب مسلمان ماں باپ کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کے فضل کے سبب والدین کو جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی جنت میں جانے کا یہ سبب بنیں گے بچے. اسی طرح بعض اوقات بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کچا بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ماں باپ کے حق میں وہ بھی شفاعت کرنے والا ہوگا اور وہ انہیں جنت میں لے جائے گا. تو یہاں جن ماں باپ کے بچے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں یا نابالغی میں بچے فوت ہو جائیں تو زیادہ واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے چاہیے. یہ تو آپ کی مغفرت کا سامان بننے والے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے شفاعت کرے گی. سبحان اللہ، یعنی قرآن کیسی کمال کی نعمت ہے کہ بندہ تلاوت کرتا رہے، قرآن سے دوستی کر لے تو پھر قرآن بھی شفاعت کرتی ہے. مبارک ہو ان لوگوں کو جو حافظ قرآن ہیں، ان والدین کو مبارک ہو جن کے بچے حافظ قرآن ہیں. حدیث پاک سنیے کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اسی طرح حافظ با عمل کی شفاعت اس کے خاندان کے ان 10 لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا، اس میں ایک اور کنڈیشن بھی ہے کہ جس نے قرآن یاد کیا اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا. تو حافظ قرآن بھی ہو اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا بھی ہو تو پھر انشاءاللہ وہ اپنے گھر والوں کی انشاءاللہ شفاعت کا باعث بنے گا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک باب شفاعت نہ کھولیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں شفاعت لائیں گے اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور شفیع ہیں. یہاں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن کس وقت شفاعت کے اختیار کو استعمال فرمائیں گے. ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام سے سنا کہ سورج ایک میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، ایک بڑا ہی وحشت ناک منظر ہوگا اور بہت بہت سارا عرصہ گزر جائے گا. یاد یہ رہے کہ قیامت کا دن کوئی آج کے زمانے کے دنوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا. یعنی گویا آج کے زمانے کے حساب سے ہزاروں سال گزر جائیں گے، لوگ صرف ویٹ کر رہے ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے گرمی میں کسی کا ویٹ کرنا آج کے دور میں 5-10 منٹ نہیں گزرتے، اور وہاں ہزاروں سال کا ویٹ ہو چکا ہوگا. اینڈ آف دا ڈے جو اہل محشر ہوں گے، قیامت کے جو لوگ ہوں گے، وہ مل کر پلان کریں گے کہ کیوں نہ کوئی ہمارے رب کے یہاں ہماری شفاعت کرے اور ہمیں اس تکلیف سے چھٹکارا دلا دے. چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، اپنے تمام فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور تمام اشیاء کے نام آپ کو سکھائے. آپ اپنے رب کریم کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمیں اس پریشانی سے راحت عطا فرمائے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، میں یہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سفارش کرنے سے حیا کریں گے اور فرمائیں گے، تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اذهبوا الى غيري، کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، ان کے سامنے ان کے فضائل بیان کریں گے. وہ کہیں گے، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اللہ نے ایسا غضب کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا. ایسا کرو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ. پھر حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے. یعنی اہل معشر چکر لگا رہے ہوں گے ایک کے بعد دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے تو آپ ان سے فرمائیں گے، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، لیکن ہاں تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کریم کے خاص بندے ہیں جن کے سبب اللہ کریم نے ان کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، پھر لوگ میرے پاس حاضر ہوں گے تو میں مسلمانوں کی 2 قطاروں کے درمیان چلتا ہوا اجازت لینے کے لیے اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہوں گا. بس اپنے رب کریم کو دیکھتے ہی میں سجدے میں چلا جاؤں گا، جب تک اللہ پاک چاہے گا مجھے اس حالت میں رہنے دے گا. اللہ اکبر! اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کیوں کریں گے؟ طویل سجدہ کریں گے. ایک روایت کے مطابق وہ 1 ہفتہ، آج کے دنیا کے زمانے کے مطابق وہ 1 ہفتے کا سجدہ ہوگا، اتنا طویل سجدہ ہوگا. لیکن پھر اٹھایا کس طرح جائے گا اس سجدے سے، کس پیار سے ندا دی جائے گی؟ ارشاد ہوگا، اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، کہیے، آپ کی سنی جائے گی، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیے، आपको अता किया जाएगा। महबूब व मुहिब का प्यार देखें, अल्लाह अपने हबीब से किस कदर मोहब्बत फरमाता है और नबी पाक अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं कि सजदे में क्यों हैं, हम गुनाहगारों के लिए। फिर आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, मैं अपना सर उठाऊंगा और अल्लाह करीम की वो हमद करूंगा जो वो मुझे सिखाएगा, फिर मैं शफात करूंगा तो मेरे लिए एक हद बयान कर दी जाएगी, बस मैं शफात करके लोगों को जन्नत में दाखिल करूंगा। प्यारे व्यूवर्स, ये मामला तीन बार होगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते फिर मैं चौथी बार शफात के लिए अल्लाह पाक की तरफ रुजू करूंगा और अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब, जिसको कुरान ने रोक रखा है उसके सिवा कोई बाकी नहीं रहा, फिर उसे भी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में जौ के दाने के बराबर ही भलाई होगी, फिर उसे भी निकाल लिया जाएगा जिसके दिल में गेहूं के एक दाने के बराबर नेकी होगी और उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, फिर उस ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को भी निकाल लिया जाएगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी भलाई हो। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए मेरे आका कैसे शफीक है, कैसे मेहरबान है, तलाश कर करके अपने उम्मतियों की शफात फरमाएंगे, जहन्नम में जाने वालों को भी जहन्नम से निकाल लाएंगे, फिर ऐसे आका अलैहिस्सलाम से हम क्यों ना मोहब्बत करें। कितनी जरूरत है हमें उनकी उनकी शफात की, उनको राजी करने वाले हमें काम करने चाहिए। अब आगे चलते हैं। इस रिवायत में हमने सुना कि दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, इससे मुराद ये है कि मेरा मर्तबा उस शफात उज़्मा से कम है, और हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम ये बात बतौर आजजी और इनकिसारी और लोगों को इस शफात की बड़ाई समझाने के लिए फरमाएंगे जिसके हकदार अल्लाह के आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही तो वो मकाम महमूद है, यही तो वो इज्जत का मकाम होगा जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को कयामत के दिन अता किया जाएगा। नाजरीन, उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें आप अलैहिस्सलाम की शफात नसीब नहीं होगी। जरा गौर कीजिए वो बदनसीब कैसा होगा। फरमाया, वो शख्स जो शफात पर यकीन नहीं रखता वो शफात से महरूम रहेगा। एक और हदीस पाक में है कि सहाबा का गुस्ताख, सहाबा को बुरा भला कहने वाले को भी नबी पाक की शफात से हिस्सा नहीं मिलेगा। अल्लाह हमें सहाबा और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत भी अता फरमाए और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की भी सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। अब हमने शफात की तो बात की है, अब एक अहम बात जिसमें शफात के मफहूम को मजीद समझने में हमें मदद मिलेगी। उलमाए किराम ने शफात को इस तरह भी कैटेगराइज किया है कि पहली किस्म शफात उज़्मा है, ये वही शफात कुबरा है जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। दूसरी किस्म की शफात किसी खास कौम यानी ग्रुप को बेहिसाब जन्नत में दाखिल करवाने के लिए होगी। बाज़ उलमाए किराम के नज़दीक ये शफात भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के साथ ही खास है। तीसरी किस्म की शफात उन लोगों के बारे में होगी जिनकी नेकियाँ और बुराइयाँ बराबर बराबर हो जाएंगी, अब शफात की मदद से वो जन्नत में दाखिल होंगे, यानी उन्हें गोया कुछ नेकियों की जरूरत होगी और नबी पाक की शफात उनका काम बना देगी। चौथी किस्म की शफात उन लोगों के लिए होगी जो कि दोजक के हकदार हो चुके होंगे, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम उन्हें शफात फरमाकर जन्नत में ले आएंगे। पांचवी किस्म की शफात मर्तबे की बुलंदी और बुजुर्गी के इजाफे के लिए होगी। एक और शफात होगी छठी किस्म की, उन गुनाहगारों के बारे में होगी जो कि जहन्नम में पहुंच चुके होंगे और शफात की वजह से निकल कर आएंगे, और इस तरह की शफात दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, फरिश्ते, उलमा और शुहदा भी फरमाएंगे। सेवंथ कैटेगरी क्या होगी कि शफात, ये शफात जो होगी जन्नत का दरवाज़ा खोलने के बारे में होगी। जी हाँ, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जब जन्नत में जाने की बारी आएगी ना तो जन्नत का दरवाज़ा बंद होगा और वो दरवाज़ा सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलवाएंगे। मेरे आका की बरकत से ही जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा और फिर जन्नत में जाने का सिलसिला होगा। मगर हाँ, एक और खूबसूरत बात मैं आपको बताऊँ, क्योंकि क़यामत के मैदान में तो बहुत सारे अंबिया होंगे, उनकी उम्मतें होंगी ना, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत आई तो सबसे आखिर में है, हम आखिरी उम्मत है ना। मगर आप जानते हैं कि सबसे पहले जन्नत में जाने वाली जो उम्मत होगी वो हम सरकार अलैहिस्सलाम की यही उम्मत होगी। ऐ उम्मतियों, आपको मुबारक हो। जब तक नबी पाक के गुलाम जन्नत में नहीं जाएंगे ना, प्यारे आका की उम्मत नहीं जाएगी, बाकी किसी उम्मत को इजाज़त नहीं मिलेगी। सैयदी आला हज़रत का खूबसूरत शेर है ना, खुल्द है सब पर हराम, जाए ना जब तक गुलाम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद। ये कितनी कितनी ऑनर की बात है। यकीन करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती जो हमारे रब ने हमें बनाया है ना, ये बहुत बड़ा एहसान है, इस पर हमें बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आठवीं किस्म की शफात वो होगी जो मदीना मुनव्वरा वालों और नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर की ज़ियारत करने वालों के लिए खुसूसी तौर पर होगी। है मदीने जाने वालों आपको मुबारक हो। नबी पाक फरमाते हैं ना, वनजारा कबरी वजबत लहू शफाती। सुभान अल्लाह, खुश नसीबों को ये भी शफात मिलेगी। यहाँ अपनी वेब सीरीज कयामत के बाद के आज के एपिसोड को नाजरीन इस दुआ के साथ अब एंड करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हर ऐसे अकीदे, हर ऐसे काम से बचाए जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शफात से महरूम करने वाली हो। अल्लाह पाक हम सबको अपने महबूब अलैहिस्सलाम की शफात से हिस्सा अता फरमाए और बिना किसी हिसाब व किताब के हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमाए। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अच्छी नीयतों के साथ। क्या मालूम हमारी इन बातों को सुनकर कोई इश्क रसूल की तरफ आ जाए, गुनाहों को छोड़ने वाला बन जाए, आपके लिए भी तो नेकी का बाइस बनेगा ना।